ஓம் சாந்தி. பாபா கே சபி விசேஷ் ஆப் சப் சுனே ஹுவே ரத்தன் அப்பே பியாரே மதுபன் கர் பச்சே மைத்தா ஹூ கை பாய் பனே பலி பார ஆய ஹோங்கே ஜோ பலி பார ஆய ஜரா ஹாத் கடா கரே காஃபி ஹை தேங்க்யூ. சபி ஆராம் கிசி கோய் கஷ்டோ நீ ஹை டண்டி கே தின ஹை ஜிஸ் கிசி கோய் கஷ்ட ஹோ ஜரா ஹாத் கடா கரே நீ கோய் நீ அச்சா ஆஜ கா ஜோ விஷய ஹை யே ஏக ஐசா விஷய ஹை ஜோ ப்ரஹ்மண் ஜீவன் கா பஹுத் மஹத்வபூர்ண அங்க ஹை. ஹம் சப் கி பியாரி தாதி பிரகாஷ்மணி ஜி, மை சமைத்தா ஹூ சபி பாய் பனே உன்சே பரிச்சித் ஹை மிலே ஹோங்கே பாத் மே ஜோ உன்கே ஆயே உன்ஹோனே பி உன்கே பாரே மே படா ஹோகா உன்கி कुछ क्लासेस या उनके कुछ भाषण टीवी पर सीडी पर देखे होंगे सुने होंगे. जैसे आज की मुरली में बाबा के महावाक्य सुने और लास्ट में वरदान में जो महावाक्य सुने साकार बाबा का वो महामंत्र बाबा ने जिस दिन अपनी पुरानी देह का त्याग किया उस दिन के वो महावाक्य एक प्रकार से ब्राह्मण जीवन का सार कहें वो तीन शब्दों में बाबा ने वर्णन किया. ब्राह्मण जीवन में हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए वो एक शब्द है. निराकारी अनेक फिलोसफर्स ने योगियों ने इस बात को रियलाइज करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन उसके इसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं। बाबा ने आजीवन जो शिव बाबा का साकार माध्यम बनकर और अपने साकार रूप के अनुभवों के आधार से आध्यात्मिक पुरुषार्थ का सार एक शब्द में सुनाया कि जब तक हम आत्माएं अपने निज स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, शिव बाबा के साथ भी मन नहीं लग सकता है। और उसका बाबा ने एक ही शब्द दिया, निराकारी। निराकारी स्थिति बनाने का आधार क्या है? जब तक मन मनोविकारों में उलझता है, घूमता है, ग्रस्त रहता है, निराकारी स्थिति नहीं बन सकती है। इसलिए निराकारी के साथ में बाबा ने दूसरा महामंत्र का सार कहो, एक शब्द में दिया, निर्विकारी। ब्राह्मण जीवन में प्रवेश करने के बाद बाबा महसूस कराते हैं कि सुखी जीवन का आधार है निर्विकारी जीवन। ये जीवन योग्य ही तभी है जब निर्विकारी है। इसलिए जैसे ज्ञान की जागृति आई, उस जागृति के आधार से समझ में आता है कि वास्तव में हम आत्माएं अपने ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप में संपूर्ण निर्विकारी थी, तब देवता कहलाते थे। और जब उस स्थिति से नीचे आ गए तो दुखी होने लग गए। दुख से छोड़ने के लिए बहुत प्रयास किए, पर जो उसका मूल कारण था उसका ध्यान नहीं दिया। इसलिए बाबा ने दूसरा मंत्र दिया था कि निर्विकारी जीवन होना चाहिए। और जब ऐसे निर्विकारी जीवन होता है, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी है कोई प्रकार का अहंकार नहीं रहता। देह अभिमान नहीं, और उसके साथ साथ ये जो ईश्वरी जीवन प्राप्त हुई वो भी किससे प्राप्त हुई? देने वाले दाता ने इतनी सुंदर जीवन हम ब्राह्मण बच्चों को प्रदान की है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन उसका अहंकार नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार भी तो एक विकार है और पहला नंबर माना जाता है, बाकी सब तो उसके बाल बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो साकार बाबा ने सारे ईश्वरी ज्ञान का सार अपनी अंतिम साकार मुरली जो शाम के टाइम बाबा ने चलाई थी उस समय ये महावाक्य उच्चारण किए थे और उसके बाद अव्यक्त हुए। इस गहराई में अगर अपने मन को ले जाएं और उसके अनुकूल अपने जीवन को ढाल लें तो बाबा के नैनों के नूर बन जाएंगे, बाबा के दिल तख्त नशीन होंगे और बाबा की आशाओं के दीपक बन जाएंगे। इसलिए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य ये चाहिए कि हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है। साकार बाबा ने अव्यक्त होने से पहले इस यज्ञ की बागडोर दादी प्रकाशमणि जी के हाथों में दी। दादी जी के हाथ में हाथ देकर जैसे बाबा ने स्वयं इसका वर्णन किया कि अपनी सर्व शक्तियां दादी जी को प्रदान की, वारस बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। और दादी जी का महामंत्र, आप जाते हैं इधर कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर दादी जी का एक बहुत सुंदर पेंटिंग, उस पर ये शब्द लिखे हुए हैं, निमित निर्माण और निर्मल वाणी। ये दादी जी के व्यक्तिगत जीवन का सार। हम सभी जो भी यज्ञ की सेवा के निमित्त दादी जी के समीप रहे हैं, बड़ी दादियां भी, बड़ी बहनें भी, बड़े भाई भी, दादी जी की व्यक्तिगत जीवन को बहुत समीप से हम लोगों ने देखा। दादी जी ने कभी भी ये शो ही नहीं किया कि वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। इस एक शब्द के भावार्थ में सदा अपने आप को उन्होंने स्थित रखा, निमित्त। कार्य बाबा का है, कर्ण करावन हार स्वयं वो है, हम निमित्त। और निमित्त बनकर जो भी सेवा में निमित्त हैं सबको अपने साथी बनाया। किसी ने दादी जी से पूछा, दादी जी आपके फॉलोअर कितने हैं? क्या जवाब दिया होगा? दादी जी ने कहा, यहां कोई फॉलोअर नहीं है, सब मेरे साथी हैं, बाबा के बच्चे हैं, मेरे भाई और बहनें हैं। और यही भावना दादी जी की हमेशा हर एक को अनुभव होती रहती। इस बात को अगर हम सभी अपना लें कि हम कितने खुशकिस्मत बाबा के बच्चे हैं जिनको बाबा ने लाखों करोड़ों में से चुना है, और चुन करके हमें अपना वारस बनाया है और अपने कार्य के निमित्त बनाया है। चाहे कहीं पर भी हैं, बाबा के बच्चे हैं, चाहे गृहस्थ व्यवहार में हैं, चाहे समर्पित हैं, सेंटर्स पर रहने वाली बहनें हैं, भाई हैं, कोई भी हैं, लेकिन एक महानतम कार्य के निमित्त हैं सभी। मुझे वो दिन याद आते हैं जब बहुत थोड़े भाई बहने थे, आज से 50 साल 52 साल पहले की बात कह रहा हूं, पर उस समय भी बाबा के सामने मुरली सुनने वाले तो 5-10 होते थे। कभी तो टेलीफोन पर मुरली सुना रहे थे बॉम्बे में, तो सामने 5-6 लोग बैठे थे बस। लेकिन बाबा ऐसे मुरली सुनाते जैसे सारे विश्व की आत्माओं को सुना रहे हों, और उसमें भी खास जो ईश्वरी परिवार में आने वाली आत्माएं उनका आवाहन कर रहे हैं। वो सीन कभी बुद्धि से निकलती नहीं। विदेश के भाई बहने अभी एक भी नहीं आता था, साकार बाबा ने उस समय उनका आह्वान किया, विदेश से भी बच्चे आएंगे। घर घर में बाबा का स्थान होगा, घर घर स्वर्ग बनेगा, घर घर में गीता पाठशाला होगी। आज बहनें कोई कोई मिलती हैं, बताती हैं, हम 15 साल से 16 साल से ज्ञान में हैं, हमारे घर में गीता पाठशाला है, घर स्वर्ग बन गया। एक ऐसा रास्ता कि जब घर घर स्वर्ग बने तो ये विश्व स्वर्ग बने। और घर को स्वर्ग बनाने के लिए दादी जी ने जो किया, सबको साथ लेने का महामंत्र, मैं निमित्त हूं। घर में पिताजी हैं या माताजी हैं, ये नहीं कि मैं परिवार के हेड हूं, जो कहूं सो होना चाहिए, नहीं। लेकिन सबको साथी बनाने के लिए ऐसी भावना कि दिल से स्वीकार करें, साकार बाबा के अव्यक्त होने तक 140-150 सेंटर थे। आप सोचिए, और उसके बाद जिसको निमित्त बनाया दादी जी के कार्यकाल में, कितने सेंटर हुए? 8,500 सेंटर हो गए। कितने देशों में? दादी जी के टाइम 125 देशों में। आज जब से दादी जानकी जी ने अपने हाथ में बागडोर ली है, उनके बाद लगभग 140 देशों तक संदेश पहुंच गया है। लेकिन एक कल्चर को देखा जाए, ब्राह्मण परिवार का कल्चर एक, इतने सेवा केंद्रों पर कहीं पर भी कोई चला जाए, दिनचर्या एक, सुबह उठने का गीत एक, क्लास शुरू होने का गीत एक, सब जगह। रात को सोते हैं उस समय का भी गीत एक। ऐसा वर्ल्ड कल्चर बन गया है, किस आधार से बना? वो दादी जी के महामंत्र से, मैं निमित्त हूं। हम सब अगर इस महामंत्र को जीवन में अपना लें तो दादी जी की तरह महान बन जाए। आज हमारी बड़ी दादियां जो भी हैं, मैं अपने आप को इस हिसाब से बड़ा लक्की समझता हूं, बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैं ऐसे टाइम पर बाबा का बना जब सभी दादियां, मातेश्वरी जी और बड़े दादा, उस समय ईश्वरी सेवा में निमित्त थे और उनके संग का रंग हमें मिल लगा। एक एक से बहुत विशेष प्रेरणा मिलती थी। किसी के जीवन में वो अहंकार नहीं देखा, नहीं तो आप प्रैक्टिकल दुनिया में देखिए, कोई भी कहीं के उत्तराधिकारी होते हैं, बहुत अपने आप को नशा चढ़ाते हैं, मठाधीश होते हैं, किसी संस्था में बड़े पद पर होते हैं, बड़ा नशा रहता है उनको, अपना अहंकार रहता है। लेकिन बाबा के बच्चे नहीं। सबसे पहली धारणा जो सबकी, क्या देखी, हम सभी को अपनेपन की फीलिंग उन्होंने दी, अपनेपन की। हमारे बहने हैं, हमारे भाई, बस एक ईश्वरी परिवार है। जो प्लेटिनम जुबली का गीत है वो प्रैक्टिकल है, और ऐसा माहौल दुनिया में कहीं पर नहीं, कहीं पर नहीं। और इस माहौल का आधार वही है कि जो बड़े उन्होंने अपने आप को हमेशा निमित्त ही माना, निमित्त हैं बस। दादी जी से जब कोई बात पूछते थे, मैं निमित्त हूं, बाबा से पूछेंगे। बाबा की श्रीमत कदम कदम पर लेती थी, और अपने साथ सभी को साथ लेके चलने की भावना। नया कोई विचार आएगा, मुख्य जो भी जहां जहां सबके साथ मीटिंग करके उनके सामने वो बात रखेंगे, पूछेंगे आप सबका क्या विचार है, सबकी क्या राय है। सबके विचार सुन करके एक विचार उसको फाइनल करते, इसको कहते हैं निमित्त भाव। ये नहीं कि मैंने कह दिया आपको मानना है, ऑर्डर नहीं। और उसके कारण सबके दिल में दादी जी के प्रति बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट। ईश्वरी परिवार का कल्चर ही ये है कि यहां आदर सत्कार मांग के नहीं, लेकिन निमित्त भाव में आकर के, निमित्त बन करके सेवा करने से अपने आप एक दो का आदर होता है, एक दो की रिस्पेक्ट होती है। दादी जी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन थी, और जब कभी यहां सम्मेलन होते थे, उसमें संत सम्मेलन वगैरह भी हुए, या बड़े बड़े न्यायाधीश आते थे, सरकार के बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर भी आए, प्रेसिडेंट भी आए, ये नहीं कि दादी जी अपने गद्दी पर बैठे हैं और लोग आकर के उनको चरण स्पर्श करें, ऐसे नहीं। बाबा के घर आए हैं, आराम से रहने चाहिए। दादी जी खुद जा करके जहां वो रहते वहां जा करके उनका प्यार से अभिनंदन करना, और उनसे पूछना आप आराम से रहे हैं, आपको कोई कष्ट तो नहीं। जिसके कारण दादी जी ने हर वर्ग के जो बड़े हों सबका सम्मान पाया, सबकी दिल जीत ली। आज वर्ष का अंतिम दिन है, ऐसे शुभ दिन पर अगर हम स्वयं भी ऐसा संकल्प रखें, क्योंकि हर एक बहन भाई बाबा से एक्सपेक्ट करते हैं, बाबा क्या कहेंगे, मुरली में क्या होगा, क्या नया संदेश होगा, वो तो बाबा सुनाएंगे आज शाम को, लेकिन एक स्वयं हम लोग अपने पुरुषार्थ को ध्यान में रखते हुए कि हमें खुद भी क्या करने का उमंग आना चाहिए। ईश्वरी परिवार का सबसे बड़ा जो स्वरूप है वो संगठन है, और संगठन की जो शक्ति है वो और किसी बात में नहीं। सर्वशक्तिवान बाप ने भी आकर के बच्चों को साथ लिया है, हम बच्चों का साथ उनको चाहिए। बाबा खुद सर्वशक्तिवान बाप कहता है, बाप अकेला क्या कर सकता है बच्चों के बिना। जब तक संगम युग है बाप बच्चों से मिलते रहेंगे। किस लिए मिलते रहेंगे? मिलते रहेंगे तो बाबा के मिलन से बच्चों में उमंग भरता रहेगा और संगठन की शक्ति मजबूत होगी। और संगठन की शक्ति का आधार जो मैं सुना रहा था, दादी जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि निमित्त भाव से हम अगर अपने जीवन को ढाल दें तो हम भी ईश्वरी परिवार के संगठन की शक्ति को मजबूत बनाने में एक बहुत बहुत शक्तिशाली कड़ी बन जाते हैं, लिंक बन जाते हैं। और उसके लिए दूसरा जो महामंत्र है, निर्माणता। निर्माणता एक ऐसी महान धारणा है जो व्यक्ति को सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती है। हर ब्राह्मण चाहता है कि मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करूं। समझते बाबा के साथ मन लगने से अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, ठीक बात है, पर उसके साथ साथ एक्शन में जब आते हैं, कर्म में आते हैं, हम कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म क्षेत्र पर भी अगर अपने आप को निर्माण भाव से चलाते हैं तो बहुत अंदर मन में दिल में सदा सुख की फीलिंग रहती है और उसका वाइब्रेशन सबको मिलता है। निस्वार्थ भाव से, निमित भाव से जितना हम व्यवहार में आते हैं उतना ही सदा अंदर लाइट फीलिंग रहती है, हल्के रहते हैं, भारीपन नहीं आएगा कभी, मन भारी नहीं होगा। मन भारी नहीं होगा तो दिल खुश रहेगा, दिल खुश रहेगा तो चेहरा खिला रहेगा, होंठों पे मुस्कान रहेगी, नैनों में मुस्कान रहेगी, अपनेपन की फीलिंग अपने आप आएगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी महान आत्माएं हुए हैं, बाबा को देख लो, बाबा के महावाक्यों में बाबा कई बार ये बात साकार में कहते थे, बच्चे आई एम योर मोस्ट मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर, बाप हूं लेकिन मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। और बाबा को प्रैक्टिकल देखा, दादी जी को प्रैक्टिकल देखा, बच्चों की कोई भी बात हो किसी समय भी हो ध्यान देते थे, सुनते थे और गाइड करते थे। कोई की तबीयत ठीक ना हो, पता चले वो बहन या भाई बाबा को या दादी को याद करते हैं, आज भी जानकी दादी को याद करते हैं, फट वहां पहुंचेंगे, आप सोचिए कितना मनोबल उससे बढ़ता है। दवाई से इंजेक्शन से इतना नहीं बढ़ता जितना के प्यार की शक्ति से बढ़ता है। ईश्वरी प्यार इतना शक्तिशाली इंजेक्शन है, और वो तभी हो सकता है जब ऐसी निर्माणता दिल में हो, अपनेपन की भावना दिल में हो, तो स्वयं को अवेलेबल करेंगे। उस समय ये नहीं कहेंगे मैंने आराम नहीं किया है, मेरा अभी इस बात के लिए टाइम नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। और जब ऐसी धारणा होती है तो भाषा ऑटोमेटिकली कैसी हो जाती है, शुद्ध शुभ। जिसको दादी जी के लिए कहते हैं निर्मल वाणी, उसमें कोई निश्चल भाव सब देखने में आएंगे, छल नहीं, कपट नहीं, कुछ नहीं, निश्चल भाव। मिठास होगी उसमें, नम्रता होगी, शक्तिशाली होगी, सच्चाई से भरी होगी। दादी जी का एक विशेष गुण जो बड़े फखर से दादी सुनाती थी, बड़ी बड़ी सभाओं में उन्होंने सुनाई, बड़ी निर्माणता से सुनाएंगी, लेकिन बहुत दृढ़ता कहो एक अपनी धारणा के फलस्वरूप, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, सदा सच बोला है, ये दादी जी का विशेष गुण। एक बार एक सम्मेलन हो रहा था, विदेश के भी थे, देश के भी थे, संत महात्माएं भी थे, दादी जी को किसी ने इशारा दिया, दादी आप खान पान की बात पर बहुत जोर देती हैं, वेजिटेरियन खाना होना चाहिए, इसकी बात नहीं करना। तो दादी जी ने सुन लिया, मुस्कुरा दिया, सिर तो ऐसे हिला दिया, लेकिन जब उन्होंने भाषण किया तो उस बात को बड़े जोर से कहा। नॉन वेजिटेरियन खाना जो है यह मनुष्य का भोजन ही नहीं है। सात्विक भोजन, शिव बाबा की याद में बना हुआ भोजन, जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं, उस ब्रह्मा भोजन की महिमा है। वो खाएंगे तो मन शुद्ध होगा और फिर सबसे हाथ उठवाया कि आज से वेजिटेरियन कौन बनेंगे, तो सारी सभा ने हाथ उठाया कि हम सभी आज से वेजिटेरियन बने। सत्यता में इतनी शक्ति है, लेकिन सत्य बात को कहने के लिए भी बहुत नम्रता चाहिए, निर्माणता चाहिए। जितना निर्माणता से सत्य बात कहेंगे उतना ही उसका असर ज्यादा होगा। नहीं तो दुनिया में क्या कहते हैं, सत्य जो है वही वो तीखा होता है। और उसके कारण नुकसान हो जाता है। यूं तो सत्य बोलने से फायदा होना चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए, तो वो सीखने को मिलता है बड़ों से कि वाणी इतनी सुंदर निर्मल होनी चाहिए। और निर्मल वाणी का भाव ही है कि बहुत नम्रता से अपनी बात कहें, अगर हम दृढ़ता से कहें पर नम्रता से कहें तो उसका असर बहुत होगा। विश्व परिवर्तन के लिए ये गुण बहुत आवश्यक है। ये गुण ही नहीं बल्कि ये शक्ति का रूप ले लेते हैं। परिवर्तन के लिए हमेशा शक्ति की जरूरत होती है, तो दिव्य गुण भी दिव्य शक्ति का रूप ले लेते हैं। इसलिए निमित्त बनकर निर्माणता की भावना से निर्मल वाणी के द्वारा विश्व परिवर्तक बनना, यही बाबा के बच्चों की निशानी है। ओम शांति। अभी आज के दिन की खुशी मनाएंगे, सभी के पास अपने कागज पेन हैं? हैं? अच्छा, एक संकल्प आ रहा है अगर आपको ठीक लगे तो। बीते वर्ष में जाने अनजाने अगर कोई ऐसी बात जो ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल नहीं थी, जो आपको मन में आज भी खटकती हो और उससे निरसंकल्प होना चाहते हैं, तो उसका सहज तरीका है। बाबा कहते थे, बच्चे कोई भी बात है तो वो लिख करके बाबा को दे दो, सच्ची दिल से लिखो, बाबा को दे दो, फिर निरसंकल्प हो जाओ। करके देखो, अपने ही पास रखो, किसी को देने की जरूरत नहीं है। आज लिख लो, कल फाड़ के फेंक देना, चाहे आज शाम को भी फाड़ के फेंक देना बाबा के बाद। लेकिन अभी 3-4 मिनट आराम से लिख लो, निरसंकल्प होके लिख लो। اس کے بعد پھر 10 منٹ بابا کی یاد میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے؟ منظور ہے؟ کرنے کا من ہے؟ اچھا تو آرام سے لکھو. کئی بھائی بہنیں پوچھتے ہیں دادی کی طبیعت کیسے ہے. گلزار دادی کی طبیعت بہت اچھی ہے. پر جیسا میڈیکل ایڈوائس ملتی ہے اس انوسار پروگرام جیسے صبح کو سنایا گیا تھا وہی اتنی چھٹی ہے ڈاکٹر کی 7 بجے سے 10 بجے تک. تو یہ بھی اہو سوبھاگیہ ہے کہ اتنا سمے ہم سبھی کس کے ساتھ بتائیں گے. دنیا میں تو 1 سیکنڈ کے ساکشاتکار کے لیے اتنا ماتھا ماری کرتے ہیں پھر بھی درشن نہیں ہوتا ہے. اور یہاں بابا سنمکھ ہوں گے. دل میں گدگدی ہوتی ہے وارے میں جس کو بابا ملیں گے ایسا سوبھاگیہ ہمارا. بہت خوشی کی بات. اسی نشے میں رہنا سارا دن اسی نشے میں رہنا. کہتے ہیں نا سال کے انت میں انت بھلا سو بھلا. تو انت میں بھی بابا سے ملیں گے تو اگلے سال سارا سال اس کا پھل ملتا رہے گا. سارا سال تو کیا اگلے یگ تک چلے گا وہ. لکھ لو لکھ لو پہلے. شاباش. اور نہیں لکھنا ہو تو من ہی من میں سنکلپ کرو یہ بھی آپ کے اوپر ہے. اور آج کے بعد یہی سوچنا کہ ابھی یہ سب باتیں تو میں نے بابا کو دے دی اب یہ میری نہیں ہے. اب مجھے اس میں من کو وچلت نہیں کرنا ہے. اب سیدھے بیٹھ جائیں سبھی. خاص 10-15 منٹ بابا کے یاد میں اچھی طرح سے جو سنکلپ لیا اس کو کیا کہتے ہیں سینچنا ہے. یوگ بل سے سینچنا ہے. اور یوگ بل کیسے اکٹھا ہوتا ہے؟ بابا کے ساتھ رہیں گے. بابا کے ساتھ سنگ کے رنگ میں رنگیں گے تو اچھی طرح سے باپ سمان بننے کا انبھو کریں گے. بابا کہتے پہلے میرے پاس وطن میں آؤ سوکشم وطن میں فرشتہ بن کر آ جاؤ اور پھر ساتھ میں پرم دھام میں چلو. نراکاری سوروپ میں نراکاری دیش میں نراکاری ستھتی میں ستھت ہو کر کے اپنی شکتی شالی ماسٹر گیان سوریہ کی ستھتی کا انبھو کرو. گیان سوریہ کے سنگ میں بچے کو ماسٹر کہتے ہیں. ماسٹر گیان سوریہ بن کر وراجمان ہو جائے. महसूस करो जब हम आत्मा अपने निज स्वरूप में अपने स्वीट होम में परमधाम निवासी हैं, कितने लाइट हैं, चमकते हुए सितारे, दिव्य सितारे। ईश्वरी संग में ईश्वरी लाइट और शक्ति से भरपूर अपनी संपूर्ण स्थिति में, बाप समान स्थिति में स्थित, संपूर्ण पावन स्थिति है, संपूर्ण शक्तिशाली स्थिति है। शांति, प्रेम, और शक्तियों से भरपूर दिव्य सूर्य के संग के रंग में, दिव्यता से संपन्न मास्टर दिव्य सूर्य सारे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं।